नमस्कार, प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आपको सुना रहा हूं शेखर गुप्ता के साप्ताहिक कॉलम नेशनल इंटरेस्ट को, जिसमें वो लिखते हैं कि भारत में हिजाब के समर्थक सुप्रीम कोर्ट में जीत भी जाएं तब भी असल में उनकी हार ही होगी। वजह यह है कि असली लड़ाई राजनीतिक है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कथित मुस्लिम हिजाब के मसले पर अपना फैसला सुना देगा। इसमें शायद 2 सप्ताह से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इस मसले की सुनवाई कर रही बेंच के वरिष्ठ जज जस्टिस हेमंत गुप्ता 16 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। फैसला क्या होगा, इस पर हम कोई कयास नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि फैसला जो भी हो, हार याचिकाकर्ताओं की ही होगी। अब आप सवाल करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर अदालत ने उनकी याचिकाएँ खारिज कर दी तो वे कानूनी लड़ाई तो हार ही जाएंगे, ये ठीक है, लेकिन अगर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया तो तब क्या उनकी हार मानी जाएगी? इसका जवाब यह है कि उनकी हार इसलिए मानी जाएगी कि वे इस गणतंत्र की सर्वोच्च अदालत से उस प्रथा पर मंजूरी की मुहर लगवाने में सफल हो जाएंगे जो निश्चित तौर पर रूढ़िवादी है। हम सोच समझ कर रिग्रेसिव शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जजमेंटल है, जबकि रूढ़िपंथी शब्द वास्तविकता बयान करता है। अदालत इस प्रथा को मंजूरी भी देती है तो भी इसे रूढ़िवादी ही माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को उलट दिया और ये फैसला सुना दिया कि यह एक ज़रूरी धार्मिक प्रथा है, तब तो ये दोहरी हार होगी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि वे अपने परिवार के दबाव में रहती हैं। यह उनके लिए विकल्पों का दायरा बढ़ाने की जगह सिकोड़ देगा। अगर इस तरह का फैसला आता है तो यह ईरान के आयातुल्लाओं के लिए भी खुदा की नेमत साबित होगा। वे कहेंगी कि देखो, एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की सबसे ऊँची अदालत भी कह रही है कि किसी भी दौर के लिए हिजाब पहनना एक ज़रूरी मजहबी रवायत है, तो हमारी इस्लामी रिपब्लिक इस पर कोई उंगली कैसे उठा सकता है, ये तो एक इनकलाबी फैसला है। ये सवाल बिल्कुल शब्दों का खेल है कि जब ईरान में महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तब भारत में आधुनिक और समझदार माने जाने वाले लोगों में हिजाब के लिए इतना समर्थन क्यों है। भारत में हिजाब के पक्ष में तर्क अपना मतलब साधने वाला ही है और ये खुद को ही खारिज करता है। इसकी वजह यह है कि ईरान में महिलाएं हिजाब न पहनने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्हें अपनी खुशी से हिजाब पहनने वाली महिलाओं से कोई परेशानी नहीं है। भारत में ये संघर्ष काफ़ी सीमित है। मुद्दा यह नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं या नहीं, बेशक जो चाहे इसे पहन सकता है। आज हमारी बहस इस बात को लेकर है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने मसला ये है कि स्कूल जाने वाली गैर बालिग लड़कियों को ये पहनने का अधिकार है या नहीं। कर्नाटक में मुद्दा यह है कि टीनेजर मुस्लिम लड़कियां अपने स्कूल की पोशाक के ऊपर हिजाब पहनकर स्कूल जा सकती हैं या नहीं। मुमकिन है कि इस मुद्दे को लेकर जनमत में उलझन इसलिए है कि इससे जुड़ी संस्थाओं को कॉलेज कहा जा रहा है, लेकिन ये जूनियर कॉलेज या सीनियर स्कूल हैं जिनमें 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें शायद ही कोई विद्यार्थी बालिग मिलेगा। भारत में बच्चे प्रायः 17 साल की उम्र तक 12वीं पास कर लेते हैं। यह बात इस मुद्दे को समझने में मददगार हो सकती है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसा कोई दौर नहीं होता जब मतभेद और ध्रुवीकरण न होता हो, लेकिन आज हम जिस कदर बटे हुए हैं, इतने ध्रुवीकृत इतिहास में कभी नहीं थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वरना इस स्थिति में हम क्या निष्कर्ष निकालें कि कोई एक पार्टी लगभग पूरी तरह एक आस्था से जुड़े वोटरों के वोट से लगातार 2 बार सत्ता हासिल करती है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर 585 उम्मीदवार जीते और उनमें एक भी मुस्लिम नहीं था। ध्रुवीकृत मतदाता एक पक्षीय सरकार का गठन करते हैं, तब स्वाभाविक है कि जो लोग छोड़ दिए गए उनके मन में असुरक्षा और बेचैनी पैदा होगी। ऐसे में हाशिए पर धकेले गए अल्पसंख्यक पीछे मुड़कर अपनी उन जड़ों और बुनियादों को बचाने में जुट जाते जो बहुत उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये खतरनाक जाल बुन सकता है। इस जटिलता को समझने के लिए हम 37 साल पीछे लौटकर शाहबानो मामले पर नज़र डालते हैं। वो बिल्कुल सीधा साधा मामला था। 73 साल की एक तलाकशुदा महिला ने अपने गुजारे के लिए खर्च की मांग करते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन एक व्यक्तिगत मसला एक मजहबी सियासी मसला बन गया, क्योंकि मुस्लिम मुल्लाओं ने इसे अपने निजी कानूनों के लिए चुनौती मान लिया, जिनमें ऐसी महिला के लिए गुजारा भत्ते की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि उसे निकाह के समय ही मेहर का वादा किया जाता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता उस समय जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ कर रहे थे, जो आज अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के पिता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर की इस महिला के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे शादी के 43 साल बाद तलाक दे दिया गया था। अदालत ने उसे गुजारे के लिए हर महीने महज 500 रुपये दिए जाने का आदेश दिया, लेकिन इसे मुस्लिम जीवन शैली पर हमला माना गया। कई मुस्लिम समूहों ने जस्टिस चंद्रचूड़ के पुतले जलाए। उस समय 1986 में मैंने इंडिया टुडे में कवर स्टोरी लिखी थी। मैंने जिन लोगों से बात की थी उनमें जमात इस्लामी हिंद के तत्कालीन अमीर मौलाना अबुल लईस भी थे। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों की लड़ाई अपनी ज़िंदगी या दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी तहजीब और पहचान के लिए है। मामला केवल मुल्लाओं मौलवियों तक सिमटा नहीं रहा। ऊंची शिक्षा पाए पूर्व राजनयिक और आला बुद्धिजीवी सैयद शहाबुद्दीन तक ने रूढ़िवादियों का साथ दिया। उन्होंने उस फैसले को बौद्धिक और राजनीतिक स्तर पर भी चुनौती दी। उन्होंने बिहार के किशनगंज से उपचुनाव लड़ा और जीते। एक साल पहले वहां से राजीव गांधी की कांग्रेस का उम्मीदवार 130,000 वोटों से चुनाव जीता था। मैंने शहाबुद्दीन से भी बात की थी और उन्होंने भी पूरी स्पष्टता से मुझसे बात की। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक शाहबानो प्रकरण के बाद फिर उसके पास वापस नहीं लौटा। इस प्रकरण ने हिंदुओं को उससे नाराज कर दिया और भाजपा की इस मुहिम को ताकत दे दी कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टिकरण करती है। बाद में राजीव गांधी ने हिंदुओं को खुश करने में जो भयंकर भूलें की, जिनमें अयोध्या में बाबरी राम मंदिर का ताला खुलवाना शामिल था और जिसे हाल में जयराम रमेश ने भूल के रूप में कबूल किया, उसके कारण मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुए, जबकि बहुसंख्यक हिंदू उससे खुश भी नहीं हुए। अंततः इसका राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र मोदी की भाजपा को लगातार 2 बार बहुमत मिल गया। याद रहे कि यह सब 73 साल की एक गरीब अनपढ़ तलाकशुदा महिला को महज 500 रुपये महीने का गुजारा खर्च देने के नाम पर हुआ। ऐसा नहीं है कि आधुनिकता के पक्ष में आवाज़ें नहीं उठी, मुस्लिम समुदाय से भी ऐसी कई आवाज़ें उठी। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल के सदस्य आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई छेड़छाड़ न की जाए। मेरी कवर स्टोरी के लिए दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा मजहब इस्लाम तरक्की पसंद और आधुनिकतावादी है। अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उसी कवर स्टोरी में तब उर्दू अखबार नई दुनिया के युवा संपादक और हाल में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत से वार्ता करने वाली 5 अहम मुस्लिम हस्तियों में शामिल शाहिद सिद्दीकी ने कहा था, कस्बों का हर एक मौलाना आज लीडर बन गया है जिनका लक्ष्य संकुचित है और जिनके स्वार्थ संकीर्ण हैं। हैदराबाद की उस्मानिया विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाली प्रोफेसर कौसर आजम ने अफसोस जाहिर किया था कि मुस्लिम समाज में महात्मा गांधी और राजा राम मोहन राय सरीखे सुधारक नहीं हैं, और निराशाजनक तथ्य ये है कि हमीद दलवई सरीखे आधुनिकतावादी कम उम्र में ही गुजर गए। उस कवर स्टोरी में एक और उदार आधुनिकतावादी आवाज़ जेएनयू की प्रतिष्ठित प्रोफेसर जोया हसन की थी, लेकिन उदार आधुनिक आवाज़ों को अनसुना कर दिया गया और इसके राजनीतिक नतीजे भी सामने आए। वे नतीजे इतने गंभीर थे कि 4 दशक बाद भी हम हिजाब के मामले में वैसे ही विवाद में उलझ गए हैं। चुनने की आज़ादी का सवाल, संस्कृति पहचान को बनाने, सबको एक रंग में रंगने की अस्वीकार्य प्रक्रिया को रोकने का मुद्दा बन गया है। बड़ा फर्क यह आया है कि शाहबानों के पक्ष में जो शिक्षित सम्मानित आधुनिकतावादी स्थापित मुस्लिम आवाज़ें तब उभरी थीं, वे आज दूसरे पाले में चली गई हैं। उस समय उन्होंने एक नैतिक तथा बौद्धिक संघर्ष किया था और हार गई थी। आज वे दूसरे तरफ से लड़ रही हैं, ज़्यादातर इसलिए कि उन्हें नरेंद्र मोदी को लेकर आशंका है। बदकिस्मती से वे इस बार भी हारने वाली हैं, चाहे अदालत का फैसला जो भी हो। सुनने के लिए धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नेशनल इंटरेस्ट के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।